मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले आइए कुछ एक दो जो खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है जिसे आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा और न्यूज़ में भी आपने सुना होगा, स्पेशली रेडियो न्यूज़ में, और वह यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ है जिसे फीफा कहा जाता है, उसने फिलहाल जो हमारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है उसे आप यूं कह लीजिए कि निरस्त कर दिया है। क्या है इसे हम आगे चल करके जानेंगे, लेकिन आइए पहले कुछ चीजों को स्पष्ट कर लें। बार बार इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, फीफा फीफा फीफा, और फीफा के बारे में आप जानते भी होंगे कि ये विश्व का फुटबॉल महासंघ है, लेकिन जब आप फीफा का फुल फॉर्म ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि थोड़े कंफ्यूज्ड हो जाएं, मैच न करें इससे। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी जानकारी मुझे इसके बारे में आपको दे देनी चाहिए। FIFA, तो आप कह सकते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। अब आप देखिए कि है ना मामला गड़बड़, फेडरेशन भी है इंटरनेशनल तो ठीक है, फुटबॉल भी है और एसोसिएशन भी है, लेकिन इसके बीच में डी भी है। तो इसका पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। थोड़ा सा अटपटा सा आपको लगा होगा, आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि प्री में इस तरह के क्वेश्चन सब पूछे जाने लगे हैं। तो फीफा का जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये जो डी है, ये डी शब्द बताता है कि इनफैक्ट यह जो नाम लिया गया, तैयार किया गया है, ये फ्रेंच भाषा पर आधारित है। फ्रेंच में डी शब्द का बहुत प्रयोग किया जाता है, और इसकी जब स्थापना हुई थी तो पेरिस में ही हुई थी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही हुई थी। अब यह बात अलग है कि इसका जो अब मुख्यालय है वो ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1904 में, और विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत फिर इसने की थी 1930 से। ये क्लियर हो गया फीफा के बारे में। हमारे यहां का जो फुटबॉल संघ है उसका नाम है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। हमारे यहां का जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है ये 1937 में अस्तित्व में आया था। 1937 में इस संघ की स्थापना हुई थी और फीफा से ये 1948 में जुड़ा था, यानी कि आजादी के एक साल के बाद यह फीफा से संबद्ध हुआ था। फीफा के बहुत से देश सदस्य बन चुके हैं, 200 से भी अधिक, लगभग 210-12 सदस्य फीफा में शामिल हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं वर्तमान समस्या पर। समस्या क्या है? फीफा का जो नियम है उस नियम को थोड़ा सा जान लीजिए। उसका नियम यह है कि फीफा के जो भी सदस्य राष्ट्र हैं वे जो भी गतिविधियां चला रहे होंगे, अपने यहां की जो भी एक्टिविटीज कर रहे होंगे, वे बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कर रहे होंगे। यानी कि जो संघ होंगे वही अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे, और उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है, इंश्योर करना होता है कि उनके किसी भी मामले में किसी तीसरे पक्ष का कोई हस्तक्षेप नहीं है, चाहे फिर वो सरकार हो, चाहे वो समिति हो, चाहे वो कोई उद्योगपति हो, नॉट एट ऑल। यानी कि जो ये संघ है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, यही अपने आप में सब कुछ है, स्वतंत्र है हर चीज के मामले में, ये इसका नियम है। भारत के साथ क्या हुआ है, हम अपने फेडरेशन के बारे में देखते हैं, फुटबॉल फेडरेशन के बारे में। हमारा फेडरेशन चल रहा था तो हुआ ये कि 2020 में हमारा जो कार्यकाल था फेडरेशन का, जो भी उसके अध्यक्ष थे और वो थे, उनका कार्यकाल खत्म हो गया था 2020 में। लेकिन फिर भी जो अध्यक्ष थे उसके, वो बाकायदे बने हुए थे, यानी कि बिना चुनाव कराए, सरल शब्दों में आप कहें कि उसके चुनाव नहीं कराए गए और वे उसके हेड बने हुए थे, प्रफुल्ल पटेल बने हुए थे। तो इसी साल जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे कहा कि 2020 में अभी जो फेडरेशन है, जो उसके ऑफिस बेरर हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो गया है, इसके बावजूद वो अपने पद पर बने हुए हैं तो ये गलत है। और फिर क्या किया गया कि फेडरेशन का काम चलता रहे इसके लिए प्रशासकों की एक समिति बनाई गई, कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाया गया, प्रशासकों की समिति, 3 सदस्यों की एक समिति बना दी गई और ये जो समिति है यही फिर फेडरेशन का काम देख रही है। अब आप देखिए कि जो फीफा है उसने इस समिति को एक तरीके से हस्तक्षेप माना, यानी कि फेडरेशन स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही क्योंकि चुनाव नहीं हुए। इसके आधार पर फीफा ने अभी बकायदे हमारे यहाँ के फेडरेशन को आप यूं कह लीजिए कि निरस्त कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ अभी कुछ समय बाद अंडर 17 के टूर्नामेंट होने थे, 11 अक्टूबर से महिला अंडर 17 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत कर रहा था, उसे भी अब अलग कर दिया गया है, भारत को मेजबानी से अलग कर दिया गया है। तो भारत के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता की बात है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात में इसकी चर्चा की थी। अब देखते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोशिश की जा रही है, हमारा जो फेडरेशन है लगातार अब इस काम में लगा हुआ है कि किसी तरह से मेजबानी उसकी वापस मिल जाए और साथ ही साथ जो निलंबन है वह भी समाप्त हो जाए। लेकिन चूंकि एक बड़ी घटना है तो मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़े से अपेक्षाकृत विस्तार के साथ आपसे बात की जानी चाहिए। दोस्तों, रेडियो न्यूज में आपने एक खबर सुनी होगी कि भारत ने फिर से ओपनली कहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। और जब हम कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए तो उसके साथ साथ हम सुरक्षा परिषद में भी सुधार की मांग करते हैं और यह अभी की बात नहीं, बहुत लंबे समय से यह मांग की जा रही है क्योंकि सुरक्षा परिषद में जो एक तरह अलग किस्म की अलोकतांत्रिक पद्धति, आप जानते हैं कि जो 5 सदस्य हैं उनके पास वीटो पावर होता है, उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसकी चर्चा करने में यहां नहीं जा रहा हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि खासकर संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की जो बात कही जाती है इस टॉपिक पर आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी होनी चाहिए। केवल भारत ही मांग नहीं कर रहा है बल्कि सच कुछ और राष्ट्रों ने भी मांग की है और कुछ कमेटीज जो इसके बारे में बनाई गई उन्होंने भी इस तरह की बातें कही हैं, सिफारिशें की हैं कि नहीं सुधार किए जाने चाहिए। तो उसका आपके पास पूरा इतिहास होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ भारत के कौन कौन से पॉइंट्स हैं वे भी आपको मालूम होने चाहिए। मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि इस पर बहुत विस्तार से मेरा लेक्चर ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया गया है, जब भी आप अपने सीरीज में उसे सुने तो इस टॉपिक पर खासकर विशेष रूप से ध्यान दें। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर और वह मुख्य परीक्षा के प्रश्न। इसकी शुरुआत में एक प्रश्न से ही करता हूं और मेरा प्रश्न बहुत ही सरल और सहज सा है और वो ये कि कल मैंने आप लोगों से कुछ लिखने के लिए कहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 प्राण की जो बात कही है, 5 संकल्प आप कह सकते हैं, उन पर 100-150-200 शब्दों में लिखने का अनुरोध मैंने आप सबसे किया था। पता नहीं आप लोगों ने किया या नहीं किया। अब आप खुद सोच करके देखिए कि अगर आपने नहीं किया तो क्यों नहीं किया, किया तो आपका अभिनंदन है, यह इस बात का प्रमाण है कि नहीं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन को लेकर के आप कहीं ना कहीं सीरियस तो हैं, गंभीर तो हैं और साथ ही साथ आपका मुझ पर विश्वास भी है कि सर ने अगर कुछ कहा है तो हमें उसे करना चाहिए। और अगर आपने नहीं किया है और मैं पूछूं कि क्यों नहीं किया तो मुझे मालूम है कि ज्यादातर उत्तर, लगभग 99% उत्तर यही मिलेगा कि सर समय नहीं मिला। अगर यही उत्तर है तो फिर से मेरा एक प्रश्न है कि यदि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो अभी आपका मकसद है उसके लिए समय नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी प्राथमिकता में नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए फिर तो देखिए, हमारे प्रयास जैसे होते हैं परिणाम उसी के अनुकूल आते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वक्त निकाला जाना चाहिए। दोस्तों, मेरे पास समय आज ज्यादा नहीं है इसलिए मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन मुख्य परीक्षा के अब केवल 1 महीने ही शेष रह गए हैं। मुख्य परीक्षा के बारे में मैं आज जो आप सबको हिदायत देने जा रहा हूं, या यूं कह लीजिए कि एक सत्य से जो मैं परिचय कराने जा रहा हूं, वो कुल मिलाकर के ये है कि जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या कहते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखिए, तो हमारा जो ध्यान है वो केवल प्री एग्जामिनेशन तक सीमित रहता है। मैं आज आपसे ये कहने जा रहा हूं कि नहीं, आप मेंस के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं उन्हें भी देखें, इसलिए कि मेंस के जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्री के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी जटिल होते हैं, परेशान करने वाले होते हैं और सच बात है कि काफी डिप्रेस्ड करने वाले भी होते हैं, लेकिन मेंस के क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते। मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े प्यारे क्वेश्चन होते हैं, वो बड़े सरल और सहज क्वेश्चंस होते हैं। उन जब क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये कहाँ से पूछ लिया गया, इसके बारे में तो हमने कहीं कुछ सुना ही नहीं, बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, इसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते, ऐसा आपको नहीं लगेगा। और देखिए, जब आपको ऐसा नहीं लगेगा तो इसका सीधा संबंध हमारे आत्मविश्वास से होता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ ही साथ, जैसा कि मैं लगातार कहता रहता हूं कि जो आपकी तैयारी होनी चाहिए वो मुख्य परीक्षा के आधार पर ही होनी चाहिए, तो वहां भी आपको एक तरीके से मजबूती मिलेगी कि नहीं नहीं ये हमारे मेंस के क्वेश्चंस हैं और हमें इसके आधार पर प्री की तैयारी करनी है। तो आपका जो तरीका है प्री के प्रिपरेशन का वह भी बदल जाएगा, और बदल क्या जाएगा मतलब बहुत ठोस होता चला जाएगा। तो फिर आपका जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत ही मजबूत होगा, और वो होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आप सब ऐसा करें। फिलहाल मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों, हम लोग की जो ऑनलाइन क्लासेज हैं 7 से 21 अक्टूबर के बीच में होंगी, उसके लिए 3 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। इन स्टूडेंट्स के नाम हैं शिल्पा जैन, आप विदिशा मध्य प्रदेश से हैं, विदिशा मध्य प्रदेश से ही हैं सुरभि जैन, और तीसरे स्टूडेंट हैं सुमन देवी जींद हरियाणा से। तो शिल्पा, सुरभि और सुमन, आप तीनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से एक दोस्त हैं अनीस अहमद अमेठी उत्तर प्रदेश से, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त भी करता हूं। नमस्कार।